हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। मैं अपने आप का भी स्वागत करना चाहूंगा। डेढ़ महीने बाद रविवार का कार्यक्रम आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से चाहे आप इस पृथ्वी के किसी भी कोने में रहो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इस प्रकार से विद्यमान है कि आप महसूस नहीं कर पाओगे कि क्या ये नासिक है या पाश्चात्य देश। और जहां कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त एकत्रित होकर भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर भगवान स्वयं मौजूद होते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से एक भी क्षण ऐसा नहीं जा रहा जहां पर इस पूरी पृथ्वी में भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा। और इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से हम इस आध्यात्मिक पथ पर और हमारे मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसे इतनी आसानी से सिद्ध कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हमारी डेढ़ महीने की ये यात्रा रही, ये प्रवास रहा, तो हमने सोचा कि इस विषय को ही आज लेते हैं हमारे रविवार के कार्यक्रम में कि श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत प्रवास या यात्रा के विषय में क्या कहते हैं। दूसरे स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है,
इट्स नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्ट नहीं किया।
इस सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक साधक का जीवन किस प्रकार का है और एक साधक अपने मूल उद्देश्य को जब प्राप्त करता है तो उसका अनुभव किस प्रकार का होता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, पीछे दोहराइए। धौतात्म पुरुष कृष्ण पादमूलं नमुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांत स्वशरण यथा। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलं नमुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांत स्वशरणं यथा। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं नमुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांत स्वशरण यथा। अनुवाद इस प्रकार से है, एक शुद्ध भक्त जिसका हृदय भक्ति करने से शुद्ध हुआ है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि वे ही उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं, जैसे एक भटकता प्रवासी अपने घर आने पर शांति का अनुभव करता है। तो डेढ़ महीने से हम भटक रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या अनुभव होता है जब कोई भटकता हुआ प्रवासी अपने घर लौटता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसे अपना घर कह सकता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग सबको परिवार जन ये मैं कह सकता हूं। तो जब कोई भटकता प्रवासी वो जब प्रवास करता है तो उसके प्रवास में उसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो सब हम उसकी चर्चा आज करेंगे। परंतु इन सारे अनुभवों से पहले हमें ये जान लेना है कि हमारी जो साधना भक्ति है उसकी तुलना इस प्रकार के प्रवास से की गई है। और मनुष्य जीवन, हम सब जो इस मनुष्य जीवन में हैं, इस मनुष्य जीवन की तुलना एक सेतु से की गई है। सेतु आप लोग सब जानते हैं, एक जिसे ब्रिज कहते हैं। तो सेतु का प्रयोजन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर उस प्रवासी को ले जाना। परंतु यदि सेतु पर कोई अपना घर बांधना शुरू करे, मान लीजिए कि आपको नासिक में बसना है और नासिक में आपको आपका घर बसाना है, तो घर बसाने के लिए आप कौन सी जगह ढूंढते हो? कोई प्लॉट ढूंढोगे और उस पर मकान बनाओगे। परंतु यदि कोई ढूंढ रहा है कि कहां पर नासिक में जितने सारे सेतु हैं उन सेतु पर मैं कोई एक प्लॉट खरीदूं, कोई खरीदेगा? नासिक में है सेतु है ना, कौन सा सबसे बड़ा सेतु है यहां? विक्टोरिया ब्रिज। मुझे लग रहा है अब तक मैं यूरोप में ही हूं। तो यदि कोई विक्टोरिया ब्रिज के ऊपर अपना मकान बनाने जाए तो क्या उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहेगा कोई? नहीं। परंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन में ही अपना सर्वस्व मानकर इसमें ही बस रहना चाहता है तो वो भी उसी प्रकार का मूर्ख है। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें उस सेतु के समान दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। तो यदि इस मनुष्य जीवन की तुलना सेतु से की गई है तो जो हम जी रहे हैं इस मनुष्य देह में, अपना जीवन जी रहे हैं, इसकी तुलना साधना भक्ति से की गई है। तो साधना भक्ति ये है हमारा प्रवास। और जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण की साधना भक्ति में नहीं लगता तब तक वो सेतु के उस छोर पर ही खड़ा है। हालांकि उसे ये ज्ञान होगा कि वो सेतु पर है, परंतु सेतु पर खड़े रहने से सेतु पार नहीं होगा। तो केवल ये जान लेना कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इतना जान लेने से इस मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त कोई नहीं कर सकता। जब तक कि वो इस मनुष्य जीवन में जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जब तक उसमें नहीं लगता तब तक वो उस सेतु में प्रवास करना उसने प्रारंभ नहीं किया है। तो यदि कोई भी प्रवास हम लें, यदि आप नासिक से कहीं जा रहे हो, यदि रेलगाड़ी से जा रहे हो, तो सबसे पहले टिकट होना आवश्यक है ना? क्योंकि हो सकता है कि भारत में बिना उसके भी हो जाए, काम चल जाए। जैसे एक बार एक साधु महात्मा वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, तो टीसी ने उनसे पूछा टिकट। तो साधु महात्मा कहते हैं, अरे साधु महात्मा से टिकट मांगते हो, और वो भी जानते नहीं मैं कहां जा रहा हूं, मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूं, फिर हिम्मत टिकट मांगने की। तो टीसी ने कहा, राम जन्मभूमि से पहले आपको कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कराता हूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहां पैदा हुए थे? जेल में। तो थोड़ा पहले उसका दर्शन कर लो, फिर जाना राम जन्मभूमि। तो जब हम प्रवास करते हैं और हमारे हाथ में उस प्रवास का टिकट होता है, तो टिकट पर क्या लिखा रहता है? सबसे पहले क्या देखते हैं कि गंतव्य स्थान क्या है, डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य स्थान क्या है, और कहां से टिकट बनी है, बोर्डिंग, कहां से ट्रेन पकड़नी है, वो बहुत आवश्यक है जानना। तो ट्रेन कहां से पकड़नी है और फिर हमारा डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान क्या है, और फिर हो सकता है कि कई ऐसे टिकट हो जिनमें लिखा भी जाता है कि ये ट्रेन वाया कहां से जाएगी, वाया रतलाम, या लिखा जाता है सेंट्रल या वेस्टर्न रूट। और हो सकता है कि उस प्रवासी के पास अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए एक मैप भी हो, जिसमें सब कुछ बताया जाता है कि कौन सा स्टेशन कब आएगा। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था, तो मैं दिल्ली से बंबई जब आया करता था, तो ट्रेन में एक व्यक्ति वो बड़े अजीब तरीके से अपना धंधा किया करता था। ट्रेन में बहुत से अजीबोगरीब लोग आते हैं, जैसे गीतांजलि एक्सप्रेस है जो बंबई से कलकत्ता की ओर जाती है, उसमें एक व्यक्ति वो चाय बेचता है। और उसके चाय बेचने का तरीका क्या है, वो चिल्लाते हुए जाता है हर बोगी में, खराब से खराब चाय। और जब वो इस प्रकार से बोलता है तो सभी का ध्यान पहले एकत्रित केंद्रित करता है वो, और ये कहता है कोई पिए मत ये चाय, सबसे खराब चाय लाया हूं मैं, और सबसे ज्यादा लोग उसकी चाय पीते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार में जब तक आप कुछ उटपटांग न करो, तब तक लोग देखेंगे नहीं आपके पास। तो यदि केवल इतना चिल्लाते हुए कोई जाता है कि गरम चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, काजू वाली चाय, जो भी, तो तब तक कोई देखता नहीं, क्योंकि जानते हैं कुछ डाला तो नहीं है अंदर, बोलता है खाली। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आजकल का मनुष्य समाज कैसा है, कि जब कोई मनुष्य कुत्ते की तरह भौंकेगा तो 10 लोग देखने आएंगे उसे, परंतु असली कुत्ता जब भौंकता है तो कोई नहीं जाता। बंबई में जो वीटी स्टेशन, वहां पर एक दुकान है, और दुकान के वहां पर एक खिलौना सा है जो पक्षी, एक पक्षी वहां पर लटकाया गया है दुकान के सामने रस्सी पर, और वो पक्षी के अंदर कुछ बैटरी वगैरह फिट किया है, तो वो पक्षी के जो पंख हैं वो पंख फड़फड़ाते हैं और पक्षी ऐसा गोल गोल घूमता है, और उसे देखने के लिए इतने लोग आकर पक्षी घूम रहा है, इतने सारे घूम रहे हैं ऊपर, उसे कोई नहीं देखता। तो जब हम, मैं ये कह रहा था कि दिल्ली से जब मैं मुंबई आया करता था तो एक व्यक्ति, उसके पैसे कमाने का तरीका था कि वो हर स्टेशन कौन से समय पर आएगा ये बताता सबको, भोपाल 10 बजे, भुसावल 10:45 को, और इस प्रकार से हर स्टेशन कौन से समय पर आएगा ये सब कुछ सुनाने के बाद वो सबके पास जाता, पैसा दो। तो कई लोग कहते पता है मुझे कितने समय पर सब आने वाला है। तो जब किसी के पास वो रूपरेखा है तो उसे ध्यान में रहता है कि उसका प्रवास ठीक दिशा में जा रहा है। तो ये सब कुछ जान लेना है हमें पहले, जब हम प्रवास में बैठते हैं तो ये सब कुछ जान लेना होता है। तो यदि साधना भक्ति की तुलना इस प्रवास से की गई है तो ये जान लेना है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं साधना भक्ति में। नहीं पता कहां से कहां जाना है हमें हमारी कृष्ण भक्ति में, कि जाना है कि नहीं। इस भौतिक संसार मृत्यु लोक से भगवान के दिव्य आध्यात्मिक लोक, वहां जाना है हमें। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हम जब प्रवास शुरू करते हैं तो प्रवास में अलग अलग जो अनुभव होते हैं उससे हमें साक्षात्कार होना चाहिए कि हमारा जीवन केवल प्रवास के लिए नहीं लिखा गया, हमारा जीवन हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए लिखा गया है। तो साधारणतः प्रवास में कौन कौन से अनुभव होते हैं, विशेष रूप से भारतीय रेल, भारत में जब आप प्रवास करोगे तो बहुत से अनुभव आपको होंगे, परंतु मुख्य अनुभव कौन कौन से आपको होंगे। ठीक है, प्रवचन मैं दे रहा हूं तो मैं ही बोलता हूं। सबसे पहला अनुभव कि प्रवास में कष्ट होता है कि नहीं। जो आराम हमें घर में मिलता है वो आराम प्रवास में नहीं मिल पाता। कौन कौन सा आराम हमें घर में मिलता है? सोने के लिए हमारा अलग पलंग होता है, प्रवास में नहीं, हमारा पलंग लेकर नहीं जा सकते हम। कोई किया है पूरा पलंग उठाकर ले जा रहा है और अंदर बोगी के अंदर घुसा और बर्थ के ऊपर लग रहा है पलंग। तो सोने का आराम हमें घर में मिलता है, खाने पीने का आराम जो भी बोलो बन जाएगा, होपफुली घर पे जो भी बोलो बन जाएगा, परंतु वहां पर तो वो आता है और वो जो बोलता है वही जो पकता है या जो भी कोई खरीद कर खाता है, या फिर यदि कोई पैक कर ले जाता है अपना ही खुद का खाना, तो उसमें वो सब कुछ नहीं पैक कर सकता, उसमें उसे ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज खराब नहीं होगी, कौन सी चीज फैलेगी नहीं, गंदगी नहीं करेगी। तो कष्ट है, शारीरिक रूप से कष्ट है। तो साधना भक्ति में भी यदि साधना भक्ति की तुलना उस प्रवास से की गई है तो साधना भक्ति में भी शारीरिक रूप से कष्ट होते हैं। संडे फीस्ट में आना है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी निकालनी है और घर को ताला मार कर यहां पर आना है, और फिर यहां पर इतनी भीड़ में बैठना पड़ता है, उससे पहले गाड़ी की पार्किंग, वो बड़ी समस्या आजकल हो रही कि गाड़ी की पार्किंग भी कर दी परंतु मन में रहेगा गाड़ी होगी कि नहीं, जाऊंगा तो। और आजकल कलयुग में चप्पलों की भी चिंता होती है कि चप्पलें मिलेंगी कि नहीं। तो साधना भक्ति में जब चार नियम जो हरे कृष्ण के भक्त पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, ये सब कुछ नहीं, तो शारीरिक रूप से ये सब चीजों से जब कोई निषेध करता है तो स्वाभाविकतः तकलीफ होती है। तो इस प्रवास में भी हम देखते हैं कि कष्ट है, शारीरिक रूप से कष्ट है, परंतु उस प्रवास में जब हम कष्ट भोगते हैं तो वो कष्ट भोगने के पीछे प्रयोजन क्या है कि मैं गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला हूं। और कष्ट के साथ दूसरा अनुभव प्रवास में यह होता है, असुविधा, कि इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, जितनी सुविधा हमें घर में मिलती है उतनी सुविधाएं हमें हमारे प्रवास में नहीं मिल पाती। तो वैसे ही, और एक और साक्षात्कार ये हम ले सकते हैं कि प्रवास में जितनी सुविधाएं हम लें उसमें हमारा मूल उद्देश्य प्रवास का होना चाहिए। अब देखिए, ट्रेन यदि किसी स्टेशन पर रुकी है और स्टेशन पर सुविधाएं ज्यादा हैं, ट्रेन के बोगी की तुलना में स्टेशन पर सुविधाएं ज्यादा हैं, तो कोई व्यक्ति यदि उतर जाए और कहे कि थोड़ा आराम से स्टेशन पर सारी जो सुविधाएं हैं, वेटिंग रूम में जाकर थोड़ा बैठता हूं, गई ट्रेन तो वेटिंग रूम में फिर वेटिंग करते रहो। तो जब प्रवास कर रहे हैं तो सुविधाएं कम है परंतु मूल उद्देश्य क्या है, गंतव्य स्थान तक पहुंचना। वैसे ही जितनी भी सुविधाएं हमें इस मनुष्य देह इस जीवन में मिली हैं, उन सुविधाओं का उपयोग, जैसे कि स्टेशन पर सुविधाएं जो उपलब्ध की जाती हैं, उन सुविधाओं का उपयोग एक यात्री करता है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। यह नहीं कि ट्रेन से उतरकर बस अब सुविधाओं में ही रचा पचा रहे। तो इस मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं हमें मिली हैं, बुद्धि, हमारा मन, ये इंद्रियां, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, कार्यशील होने की शक्ति, ये सब जो सुविधाएं हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचे। और असुविधा के साथ एक और अनुभव होता है, असुरक्षा, कि हमारा जो भी सामान हम लिए हैं, और स्वयं के विषय में असुरक्षा, कि आजकल तो पता नहीं कि ट्रेन पटरी पर रहेगी कि नहीं, कि कब क्या हो जाए इस ट्रेन को, और ट्रेन के साथ जो ट्रेन के अंदर हमने अपना सामान रखा है उसे कितना बड़ा बड़ा ताला और चेन और कष्टा बांध बांध कर, और कई लोग तो उसे पकड़कर सोते हैं, और कई बार जब उसे पकड़कर सोते हैं तो चोरों को पता लगता है माल इसी में है, तो वो सोच रहे हैं कि उसमें वो सुरक्षा अपने सामान की कर रहे हैं, परंतु पकड़ कर रखने के वजह से चोरों को संकेत मिल जाता है कि माल इसी में है। और कई बड़े बड़े मारवाड़ी उद्योगपति, कोई भी उद्योगपति, वो क्या करते हैं कि वो जब कुछ धंधा पानी का पैसा ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उस पैसे को सड़े से सड़े थैले में रखेंगे, है ना, उसे सड़े से सड़े थैले में रखेंगे कि यदि चोर भी आ जाए चोरी करने तो बदबू के कारण चला जाए। यदि उसे एकदम कोई बहुत कीमती शानदार संदूक में रखा हो तो चोर भी लालायित हो जाएगा, अरे अंदर कुछ भी नहीं तो संदूक तो ले चलो उठाकर। तो सामान की असुरक्षा, स्वयं के देह की असुरक्षा, और यदि आप भारतीय रेल में बैठे हो तो फिर एक और असुरक्षा की, पता नहीं कौन से दिन गाड़ी पहुंचेगी। कि कई बार देखा जाता है कि गाड़ी एकदम राइट टाइम पहुंची, परंतु कौन से दिन पहुंची ये प्रश्न अलग है। कि पिछले दिन पहुंचना था परंतु अगले दिन राइट टाइम पहुंची। तो प्रवास में इस प्रकार की असुरक्षा, वैसे ही हम जब अपनी भक्ति में लगते हैं तो असुरक्षा का अनुभव करते हैं कि मैंने अपना सारा इंद्रिय भोग छोड़ दिया इन भगवान के लिए, अब पता नहीं ये मिले ना, तो फिर वो भी जाता रहा, ये भगवान भी नहीं मिले, तो धोबी का कुत्ता। ये पता नहीं ये मुहावरा कहां से आया, धोबी के कुत्ते होते हैं, मैं तो गधा सुना था। गधा या कुत्ता है? कुत्ता है। धोबी क्यों रखता है कुत्ता नहीं पता। तो ये एक असुरक्षा है कि मैंने ये सारा इंद्रिय भोग छोड़ दिया, चाय पीना छोड़ दिया, कॉफी पीना छोड़ दिया, अब इतना मन करता है, विशेष रूप से प्रवास में तो चाय कॉफी इतने पीते हैं लोग, और कई बार तो जब हमारी यात्रा निकलती है भक्तों की तो बोगी भर भर कर भक्त बैठे रहते हैं, और ये चाय कॉफी वाले बहुत परेशान हो जाते हैं फिर, क्योंकि कोई चाय कॉफी खरीदता नहीं इनका, तो कई बार वो चिल्लाते हुए जाते हैं, दूसरों को बोलते हैं अरे कोई नहीं लेगा, ये सब भगत लोग हैं। तो कई बार वो फिर दूध बेचना शुरू करते हैं, परंतु वो भी कोई नहीं लेता। तो ये सब कुछ हमने छोड़ रखा है तो एक प्रकार की असुरक्षा रहती है कि क्या, और मैंने अपने परिवार में ये कृष्ण भक्ति का पालन करना शुरू कर दिया, टीवी हटाकर ऑल्टर रख दिया, तो इन सब के वजह से कई बार मन में कुछ संशय होता है कि क्या मैं पूर्ण सुरक्षित हूं कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण सुरक्षा देता हूं किसे, मा शुचः, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि बिल्कुल भय मत करो, क्योंकि मैं पूरी सुरक्षा दूंगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। कुंती पुत्र को भगवान ने कहा कि ढिंडोरा पीटो, ढोल मृदंग लेकर करताल लेकर जाकर सबको कहो कि मैं अपने भक्तों की रक्षा हर समय करता हूं। तो क्या हमारे अंदर इतना विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं? अपने आप से हमें हमारी इस प्रवास में पूछना चाहिए, और जितना ज्यादा विश्वास हमें भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा में रहेगा उतना हम इस असुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और असुविधा असुरक्षा की वजह से एक और अनुभव होता है भय का, कि फिर भय बना रहता है, और ये एक ऐसा अनुभव है कि इस पूरे संसार में व्यक्ति कार्यशील है, हर एक पहलू इस पूरे संसार में कार्यशील है भय की भावना की वजह से। जैसे कि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं, मद्भयात् वाति वातोयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतिन्द्रो दहत अग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात्। वो कहते हैं कि इस पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है वो उनके भय के कारण हो रहा है, भगवान से भयभीत हैं, इसलिए वायुदेव वायु वो बहा रहे हैं। तो वायु बह रही है भगवान श्री कृष्ण के भय से। मद भयात वाति वातोयम, सूर्य स्तपति मद भयात। ये सूर्य जो इतना तपाता है, ये जो तपन है सूर्य देव की, ये भगवान श्री कृष्ण के भय के वजह से अपनी तपन फेंक रहा है सूर्य। वर्ष तिंद्रो दत्त अग्नि, और इंद्रदेव वो वर्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के भय के वजह से। हालांकि गोवर्धन लीला में वो भगवान को भयभीत करने के लिए वर्षा फेंकी, परंतु अंततः जान गए कि इनके भय के वजह से मेरा सब कुछ चल रहा है। और अंततः कपिल मुनि कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात, कि मृत्यु वो भगवान श्री कृष्ण के भय के वजह से विचरण कर रही है। तो हम सब मृत्यु से भयभीत हैं, और मृत्यु मूर्तिमान भगवान श्री कृष्ण से भयभीत, और वो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से भयभीत। सोचिए तो माता यशोदा का स्तर क्या है। तो प्रवास में यह भय बना रहता है कि क्या मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। जैसे कि रामानुजाचार्य श्री वैष्णव के जो आचार्य हुए, इनको इनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा एक दिन कि आप कहते हैं कि अंत काले चमामेव, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अंत समय में जब कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो वो भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है, परंतु यदि मेरी मृत्यु ऐसी दशा में हो कि मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाऊं, अब मुझे तो पता नहीं कि मेरी मृत्यु कैसे होने वाली है, तो ये एक और भय है कि हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कैसे होने वाली है। कोई जानता है? एक ये भय कि हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कैसे होने वाली है, और इससे बड़ा भय कब होने वाली है। इसीलिए महाराज परीक्षित का सौभाग्य देखिए कि महाराज परीक्षित को दोनों का ज्ञान हो गया था कि मृत्यु कब होने वाली है और कैसे होने वाली है। इसलिए वो श्राप नहीं था, वो वरदान था महाराज परीक्षित के ऊपर। तो यदि हमें पता लग जाए कि हमारा अंत समय कब आने वाला है और कैसे आने वाला है, जैसे अक्सर लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, अपना हाथ वगैरह दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, परंतु क्या जानने के लिए, ये सुनने के लिए कि मेरी मृत्यु निकट तो नहीं ना, दूर है ना बहुत। या यदि कोई ज्योतिष कह दे कि है ही नहीं, लाइफलाइन ही नहीं, इसके दो अर्थ हो सकता है, लाइफलाइन ही नहीं है मतलब कभी भी। तो ज्यादातर कोई व्यक्ति अपना भविष्य में क्या जानना चाहता है, वो अपने भविष्य में यह जानना चाहता है कि मैं कितना जीऊंगा, है कि नहीं। जैसे कि एक बार एक ज्योतिषी अकबर से मिला, तो अकबर ने ज्योतिषी से पूछा कि बताओ भाई मेरे और मेरे परिवार का भविष्य बताओ। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आपका परिवार तो मरने वाला है कुछ समय में। तो अकबर ने कहा मेरा परिवार कुछ समय में मरने वाला है, ये समाचार सुना रहे हो तुम बादशाह अकबर को, खत्म कर दो इसे, मारो पहले। तो अब वो ज्योतिषी भाई, मैंने तो भाई आपने जो पूछा बताया, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं थोड़ी परिवार वाला हूं। तो जब भी अकबर के राज दरबार में कोई समस्या होती तो कौन आता समस्या को सुलझाने के लिए? तो ज्योतिषी गया भागते हुए, भाई कुछ करो। तो बीरबल ने कहा कि भाई देखो, तुमने जो कुछ कहा बादशाह अकबर से वो तो ठीक कहा, परंतु उसे कैसे कहना है ये सीख लेना चाहिए तुम्हें। उसे कैसे कहोगे उसका बिल्कुल दूसरा परिणाम होगा। तो उसने कहा कैसे कहते हैं अब ये बात को? तो बीरबल वो बोले कि चलो मेरे साथ। तो बीरबल जाकर बादशाह अकबर से कहते हैं कि आपके भविष्य में लिखा है कि आप आपके परिवार वालों से ज्यादा जिएंगे। तो अकबर ने कहा अच्छा ये मेरा भविष्य है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया इसने? तो ज्योतिषी ने बीरबल से कहा वही तो मैंने कहा था। तो बीरबल ने कहा लेकिन सही तरीके से नहीं कहा। बात वही है कि आपके परिवार वाले मरने वाले हैं और आप आपके परिवार वालों से ज्यादा जीने वाले, दोनों का अर्थ एक ही है परंतु केवल शब्दों का हेर फेर है ना। तो अक्सर व्यक्ति ये जानने के लिए जाता है कि कितना समय बाकी है या मैं कितना जीऊंगा। तो एक प्रकार का एक साधना भक्ति में यह भय होता। इसलिए जब रामानुजाचार्य को प्रश्न पूछा गया कि अंत समय क्या हम क्या यदि मेरी मृत्यु ऐसी लिखी है कि मैं उस आपातकालीन स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी नहीं कर पाऊं, तो फिर क्या जीवन भर मैंने जो भक्ति की वो निरर्थक जाएगी? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि यदि किसी भक्त ने गंभीरता से ईमानदारी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है तो भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती उसके स्मरण में अपने आप को रखेंगे। यह उनकी कृपा कि यदि वो भूलने की भी कोशिश करे तो भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वो जबरदस्ती उसके मन में उसकी चेतना में अपने आप का स्मरण कराएंगे। तो ये भगवान का आश्वासन है। तो यदि ये भगवान का आश्वासन है तो फिर भय किस बात का? इसलिए भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप, हमारा जो आत्मा है, आत्मा से सबसे निकट भगवान है। कई बार हम इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति को अपना सबसे निकट मानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति ये मेरा सबसे निकट का संबंधी है, परंतु कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार का अपने से परमात्मा से ज्यादा निकट नहीं हो सकता। अब जैसे कोई यदि पति पत्नी है तो वो एक साथ बैठते हैं शादी में या हर जगह पर अगल बगल में बैठते हैं ना फोटो खिंचाने के लिए भी, परंतु सबसे बगल में चाहे कोई किसी का पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका भी हो, परंतु आत्मा से परमात्मा जितना निकट है और कोई उतना निकट नहीं बैठ सकता। तो इसलिए परमात्मा भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे इतने निकट क्यों है? ताकि आश्वासन देने के लिए कि भीऊ नको मी तुझ्या पाठीशी। क्षमा करना, डेढ़ महीने बाद मराठी बोल रहा हूं। सही था। तो भगवान सबसे निकट हैं, इसलिए यदि कोई भगवान का साक्षात्कार इस प्रकार से कर ले तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए गोविंद दास अपने भजन में कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, कि हे मन यदि केवल श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करोगे तो सारा अभय दान उनसे मिलेगा। तो हमारी यात्रा में हो सकता है साधना भक्ति में हम कुछ समय या ऐसे ऐसे प्रसंग आए जब हम भयभीत हो जाएं, दिखाई न दे, हमारा गंतव्य स्थान दिखाई न दे। तो गंतव्य स्थान दिखाई न दे तो फिर निराशा उत्पन्न होती है ना। परंतु यदि गंतव्य स्थान का कुछ भी संकेत हमें मिलता रहे कि हां अब गाड़ी महाराष्ट्र से गुजरात में चली गई, तो बड़ौदा आ गया, मतलब अब महाराष्ट्र में नहीं है, अब केमछो केमछो, अब सब छे छे बज रहे हैं, तो जैसे ही गाड़ी महाराष्ट्र से गुजरात में जाती है तो समझ में आता है कि गंतव्य स्थान की तरफ गाड़ी जा रही है ना। तो फिर अंतिम अनुभव उस प्रवास में हमारा होता है आशा, कि हमारे अंदर यह आशा होती है कि हां मैं गंतव्य स्थान पर पहुंचूंगा, क्योंकि गाड़ी सही दिशा पर जा रही है। अब देखिए गंतव्य स्थान, मानो आप नासिक से दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली का स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा, चाहे कितना भी झांक कर बाहर से देखो दिल्ली का स्टेशन नहीं दिखेगा। तो फिर उस गंतव्य स्थान के प्रति आशा कैसे जागृत करोगे, या निराशा से बाहर कोई यात्री कैसे आएगा? एक तरीका है, जब वो पीछे देखेगा कि कितनी दूर आ गया है वो, जब वो देखेगा कि कितनी दूर आ गया है तो कितना उसने प्रवास कर लिया है उससे उसकी निराशा दूर हो सकती है। जैसे कि मान लो कि कोई दौड़ रहा है, किसी रेस में दौड़ रहा है और फिनिशिंग लाइन उसे दिख ही नहीं रहा कि कहां पर है वो फिनिशिंग लाइन, तो हो सकता है उसके अंदर निराशा आ जाए कि फिनिशिंग लाइन है कि नहीं, मैं भागते चला जा रहा हूं। परंतु उसके अंदर से वो निराशा दूर कैसे होगी, जब वो पीछे देखेगा कि स्टार्टिंग लाइन भी नहीं दिखाई दे रही, हाँ बहुत दौड़ लिया कि स्टार्टिंग लाइन भी दिखाई नहीं दे रही। तो पीछे, कई बार हमारी साधना भक्ति में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि मैं कहां था इस भौतिक संसार में, मैं कितने नीचे था इस भौतिक संसार में, मैं कितने अधम अवस्था में था और उस अधम अवस्था में इतना तो मैंने प्रवास कर लिया है, तो वो देखने से आशा बढ़ती है हमारी और निराशा दूर होती है। तो इसलिए हमारी साधना भक्ति में ये दोनों चीज पर केंद्रित हमें करना चाहिए अपनी चेतना को, कि हमें कितनी दूर जाना है और हम कितनी दूर चलकर आ गए, ये दोनों पर ध्यान देंगे तो आशा और निराशा का समतोल रहेगा। तो प्रवास में ये सारे अनुभव हम देखते हैं और हमारी साधना भक्ति में भी, कि साधना भक्ति में प्रवचन में हम सुनते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से अष्ट विकार आएंगे, सुना है कभी? अष्ट विकार, आंखों से आंसू, पहले तो आंखें खुली होनी चाहिए आंसू आने के लिए, स्थिति ऐसी है कि आंसू तो दूर की बात है, खुली नहीं रहती आंखें, तो आंखों से आंसू, रोमांच, कंप, कंठ गदगद हो जाना, अश्रु प्रवाहित हो जाना, ये सब कुछ चीजें। तो ये सारे, पता नहीं ये सारे अनुभव कब होंगे। और फिर आध्यात्मिक संसार जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई भी दुख नहीं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, उस आध्यात्मिक संसार में हमारा गंतव्य स्थान है। तो कई बार वो इतना ऊंचा लगता है, इतना लॉफ्टी लगता है कि कई बार निराशा हो जाती कि मैं इस स्थिति में कभी पहुंच पाऊंगा कि नहीं। जब हम भागवत में शुद्ध भक्तों के विषय में सुनते हैं तो कई बार हालांकि निराशा नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारे अनर्थ इतने पेचीदे हैं कि कई बार जब हम बड़े बड़े भक्तों जैसे अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज के विषय में जब पढ़ते हैं तो अंदर निराशा उत्पन्न होती है, पता नहीं क्या मैं कभी इस स्तर पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। बंद करो भागवत, लगता नहीं इस जन्म में हो पाएगा, अगले जन्म में खोलते हैं। तो ये इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भागवत में ऐसे भी उदाहरण है, जैसे अजामिल चैतन्य चरितामृत में जगाई मधाई, तब हम कोई बहाना नहीं दे सकते। अरे यदि भरत महाराज वो भगवान की भक्ति हिरण के देह में भी कर सकते हैं तो हम मनुष्य देह में क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उस आशा को बांध कर रखना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि एक साधक के अंदर ये गुण होना चाहिए, आशा बंद, भगवान मुझे मिलेंगे अवश्य ही, इस आशा को बांध कर रखता है साधक। तो हम जब हमारे प्रवास के विषय में कह रहे हैं तो शुरुआत है इस भौतिक संसार, जिसे कहा गया है मैथुन आगार। आगार किसे कहते हैं? डिपो। तो इस भौतिक संसार में केवल भोग वांछा के लिए सब जीव घूम रहे हैं, परंतु हमें इस मैथुन आगार से प्रेम सागर, हमारा गंतव्य स्थान है भगवान श्री कृष्ण का निज धाम जो है प्रेम सागर। तो अब पहले तो हमें पहचानना है कि जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान से आगे कैसे बढ़ा जाए इस प्रवास में। जैसे कि आप देखोगे कि किसी भी स्थान की पहचान वहां किए जाने वाले कर्म से होती है। तो इस भौतिक संसार को मृत्यु लोक या मैथुन आगर ये सब कुछ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर यही सब कार्य हो रहे हैं। कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, कोई अपना मरण दिन। खुद तो नहीं मनाएगा अपना मरण दिन, परंतु दूसरे वो मरण दिन उसका उसका कुछ मनाते हैं, विरह उत्सव। तो यही हो रहा है, इसलिए इस संसार में ये सारे कार्य हैं, इसलिए इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया। केवल भोग वांछा के लिए जीव घूम रहा है, इसलिए भोग भूमि कहा गया है इस संसार को। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र इस स्थान के विषय में हम चर्चा करते हैं तो तुरंत मन में क्या विचार आता है? कुरुक्षेत्र रणभूमि। कभी आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने के लिए कुरुक्षेत्र गए गोपियों के साथ? तो और अक्सर लोग तो कुरुक्षेत्र उस स्थान को उस स्थान के कर्म से संबंधित करते हुए अपने जीवन में भी जो कुछ होता है उसी प्रकार के वार्तालाप करते हैं। जैसे यदि घर में कोई व्यक्ति जा रहा है और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अक्सर साधारण तक क्या बोलते हैं? अरे क्या कुरुक्षेत्र लगा रखा है, जैसे कि ये गीता सुनाएंगे अब उस कुरुक्षेत्र में, तो क्या कुरुक्षेत्र लगा रखा। और कई लोग तो भगवद गीता अपने घर में इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, और भगवद गीता सुनने के बाद फिर युद्ध शुरू हुआ। तो देखिए कई लोगों के अंदर ये प्रकार की गलत धारणा है कि गीता यदि घर में रखेंगे और गीता की यदि चर्चा करेंगे तो जैसे ही गीता की चर्चा हुई उसके पश्चात फिर होगा क्या? फिर धनुष बाण तानेंगे एक दूसरे के ऊपर? नहीं, धर्म की स्थापना के लिए भगवद गीता सुनाई गई थी, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। तो इसलिए इस भौतिक संसार, ये जो स्थान है, इस स्थान को इस प्रकार से कहा गया है क्योंकि यहां पर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो इस भौतिक संसार में यदि हम अपने कार्यों को बदल दें तो हम इस भौतिक संसार को आध्यात्मिक बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्थान का नाम या उसकी रूपरेखा कार्यों के वजह से मिलती है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वो कहते हैं कि विश्वम पूर्ण सुखायते, कि उनके लिए सारा विश्व सुखमय है क्योंकि वो सारे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जब उनके ऊपर इतनी आपत्तियां हिरण्यकश्यपु ने डाली तो प्रहलाद महाराज उनको आपत्तियां नहीं देख रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण का हाथ देख रहे थे उसमें। तो इसलिए हम इस भौतिक संसार को भी आध्यात्मिक संसार में परिणित कर सकते हैं यदि हम अपने कार्यों को बदल लें। परंतु किसी भी कर्म को यदि बदलना है तो उसमें छिपी चेतना को पहले बदलना होगा। तो स्थान को यदि बदलना होगा तो स्थान के कार्यों को बदलना है, और कार्य निर्भर करते हैं व्यक्ति की चेतना के ऊपर। जैसे कि दुर्योधन भी शस्त्र चला रहा था और अर्जुन भी शस्त्र चला रहे थे, दोनों के कार्य एक ही हैं, परंतु चेतना दोनों की अलग, दोनों की चेतना अलग। दुर्योधन शस्त्र चला रहा था हस्तिनापुर का राज्य हड़पने के लिए, और अर्जुन शस्त्र चला रहे थे भगवान का आदेश पालन करने के लिए। तो हालांकि कार्य एक परंतु चेतना अलग अलग, जिसके वजह से उसका परिणाम अलग होता है। तो यदि किसी स्थान में कोई कार्य भी चल रहा है तो यह जान लेना आवश्यक है कि चेतना सही है कि नहीं उस कार्य की। समझ में आ रहा है? अब चेतना को भी यदि हम लें तो चेतना निर्भर करती है किस प्रकार का संग हम करते हैं। जैसा हम संग करेंगे वैसी हमारी चेतना बनती है। जैसे कि मृगरारी ने संग किया नारद मुनि का केवल कुछ समय के लिए, परंतु उसकी चेतना उस लव मात्र साधु संग से ऐसी चेतना हो गई कि वो शुद्ध वैष्णव बन गया मृगरारी। इसलिए कहा गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग या सत्संग से सर्व सिद्धि हो सकती है, और इसके विपरीत लव मात्र असत्संग सर्वनाश होए। तो हमारी चेतना निर्भर करती है कि हम किस संग में अपना समय बिता रहे हैं, और हमारा संग निर्भर करेगा हमारी स्वेच्छा के ऊपर। कि जैसे आज रविवार का दिन, और रविवार के दिन लोग बहुत कुछ करते हैं, हो सकता था कि आप लोग आपकी स्वेच्छा से इस समय कहीं और गए होते, नाटक देखने, पिक्चर देखने, सर्कस देखने, और कुछ नहीं तो कई लोग ऐसे ही उद्यान में बैठे रहते हैं, कुलकर्णी गार्डन बैठते हैं, चलो जाते हैं। अरे हमारे कुल की करनी क्या होनी चाहिए कि सत्संग में आए। तो कई बार कुछ करने के लिए नहीं तो चलो बैठे कहीं पर जाकर गप्पा गप्पा गोष्ठी, और वहां पर आप जाकर देखो तो लोग करते क्या है, कोई ऊंट पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, कोई घोड़े पर बैठा है। अब देखिए ये जो जानवर हैं, ये जानवर भी अपना निज कर्म ठीक से करते हैं, परंतु हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को अपना निज कर्म छोड़कर वो जानवरों के संग में उनके ऊपर बैठकर हमें लगता है कि हम अपना मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं, कि कुलकर्णी गार्डन में ऊंट के ऊपर बैठा मैं, वहीं पर बहुत से ऊंट खड़े रहते हैं। अब देखिए चिड़ियाघर में पशुओं को देखने कौन जाता है, कौन जाता है? हम मनुष्य जाते हैं, है ना। जैसे हम लंदन में थे, वहां पर हमें एक भक्त कहे कि यहां पर एक सफारी है, सफारी, सफारी आप जानते हैं किसे कहते हैं, सफारी सूट नहीं, सफारी वो एक ऐसा जंगल मनुष्यों ने बनाया है जहां पर जानवरों को पिंजड़े में नहीं रखा जाता, वो खुले घूमते हैं और आपको पिंजड़े में रहना पड़ता है, आपको गाड़ी में सब खिड़कियां ऊपर कर कर इन सब जानवरों को देखना पड़ता है। और जानवर कौन कौन से, शेर, सिंह, गेंडे, तो हमें जाना नहीं था, अरे हर कोई आता है तो उसे हम ये दिखाते ही हैं, आपको देखना ही होगा, तो हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए वहां पर दिखाने के लिए। तो वहां पर गाड़ी में आप बैठे हो और सारी खिड़कियां ऊपर होनी चाहिए और आपकी गाड़ी जाएगी, यहां से शेर गुजर रहा है, वो सिंह गुजर रहा है, और कई बार वो शेर और सिंह आपको देखते हैं बाहर से। तो हम लोग गाड़ी में बैठे थे और एक लायन सिंह, इतना बड़ा उसका मुंह, इतना बड़ा, और मैं खिड़की की तरफ बैठा था गाड़ी में, तो वो आकर मुझे देख रहा है ऐसे। तो मैंने ऐसी नरसिंह आरती कभी गाई नहीं होगी। अब वो घूर कर देख रहा है कि क्या गा रहा है ये। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई नर हरि रूपा, आप ही का रूप लेकर भगवान आए थे, तो थोड़ा कृपा करना भाई, इतना घूर कर मत देखते रहो। और इतना विशाल उसकी काया, और यदि वो एक वो खिड़की पर यदि अपना एक पंजा भी लगा दे, वो खिड़की तो टुकड़ा टुकड़ा, और उसके बाद हमारा क्या होगा अंदर। तो अक्सर जब चिड़ियाघर में कोई मनुष्य जाकर उन प्राणियों को देखने के लिए जाता है, परंतु कभी देखा है कि सारे प्राणी मिलकर गए, चलो देखते हैं ये मनुष्य क्या करते हैं कुलकर्णी गार्डन में। और क्या वो लाइन लगाते हैं टिकट, 5 रुपया टिकट देखने का, मनुष्य क्या करते हैं। तो जब हम अपने संग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग आपकी स्वेच्छा से यहां पर आए हो और आपकी स्वेच्छा से आप उठकर जा भी सकते हो। हाँ, देखो कितने दरवाजे खुले हैं, तो आप स्वेच्छा से किसी भी दरवाजे से अंदर आए, हालांकि बैठने के लिए आपको शर्मा प्रभु का परमिशन लेना पड़ा होगा कि कहां पर बैठना है, परंतु स्वेच्छा से आप अंदर आए हैं और स्वेच्छा से आप उठकर जा भी सकते हो बाहर, कोई रोकेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर ये स्वेच्छा, स्वतंत्रता रत्न इसे कहते हैं, ये भगवान ने दिया है, जिसके वजह से हम या तो सत्संग में आ सकते हैं या असत्संग में। तो आपने चयन किया और इस स्वेच्छा के वजह से जो संग आपने लिया उसके वजह से आपकी चेतना पर उसका प्रभाव होगा। जैसे कई बार लोग जब किसी मेले में जाते हैं तो मेले का संग क्या होता है कि वहां पर सभी भोग विलास करने के लिए गए, किसी के वो चक्री होती है उस पर बैठो या कुछ खाओ या बंदूक से गुब्बारे फोड़ो, तो ये सब वहां पर देखो तो वहां पर कोई बीडबैग लेकर बैठकर जप नहीं करता है ना, क्योंकि उस प्रकार का संग उस व्यक्ति को उस चेतना में डाल देता है कि यहां पर मुझे भोग विलास इंद्रिय भोग करना है। तो उस प्रकार के कर्म हो जाते हैं, फिर वैसा संग वैसी चेतना और वैसे कर्म, और जैसे कर्म है फिर वो स्थान वैसा बन जाता है। कि उसी जगह पर यदि आप पंडाल डालो और भागवत सप्ताह करो तो उसी स्थान पर भगवत चर्चा हो रही है तो उस स्थान को मंदिर कहा जाएगा, और उसी स्थान पर से वो पंडाल हटा दो और या पंडाल रहने दो और उस पंडाल में सर्कस शो शुरू कर दो तो कार्य अलग तो वो स्थान का नाम अलग, और वो कार्य चेतना पर निर्भर, चेतना संघ के ऊपर। समझ में आ रहा है अब तक? और संघ जो कि स्वेच्छा पर निर्भर है और हमारी स्वेच्छा निर्भर है हमारे दृढ़ निश्चय पर, कि हमारे चयन करने की जो शक्ति है वो हमारे दृढ़ निश्चय से हमें मिलती है। कि यदि दृढ़ निश्चित है कि मुझे सत्संग ही करना है रविवार के दिन और कुछ नहीं, बाकी पूरा हफ्ता तो इस भौतिक देह के लिए क्या कुछ नहीं मैं करता, परंतु रविवार के दिन दृढ़ निश्चय कर मुझे सत्संग में आना है, तो जब यह दृढ़ निश्चय रहेगा तो जो स्वेच्छा है वो उसका सदुपयोग होगा, और उस दृढ़ निश्चय के वजह से स्वेच्छा का सदुपयोग, स्वेच्छा के सदुपयोग के वजह से सही हम संग करेंगे, सही संग के वजह से सही चेतना के वजह से सही कर्म, और वही कर्म यदि हम जहां कहीं पर भी रहें यदि वो करें तो वो मंदिर या भगवान का धाम हो जाएगा। इसलिए घरों को पहले भवन कहा करते थे क्योंकि वहां पर भगवान, ये जो भ है भवन का, तो भगवान केंद्र में रहते थे, सारे कार्य उन भगवान के लिए किए जाते थे, परंतु यदि उस भवन से भ को हटा दो तो केवल वन रह जाएगा जहां पर प्राणी रहते हैं, और प्राणी के क्या कार्य हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये प्राणियों के कार्य, जानवरों के कार्य। तो इसलिए यदि ये मनुष्य देह जिसकी तुलना एक सेतु से की गई है और इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यदि हमारे प्रवास से की गई है, साधना भक्ति, तो हमें ठीक ठीक से जान लेना चाहिए कि हमें इस प्रवास में कितना सामान लेना है कितना छोड़ना है, और इस प्रवास के अनुभव से हमें क्या सीखना है, और अंततः हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ये जो पद्धति, ये जो क्रम बताया गया है, क्या इस क्रम का पालन मैं इस प्रवास में कर रहा हूं या नहीं। और जब हम इस प्रकार से अपना प्रवास शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से भक्तों के संग में ये जो वाहन है हमारी साधना भक्ति का, ये अंततः हमें हमारे मूल उद्देश्य स्थान तक पहुंचाएगा ही, और वो है भगवान श्री कृष्ण का धाम। जैसे कि मैं 1.5 महीने तक यहां वहां घूम रहा था परंतु मुझे पता था कि यहां से यूके से जर्मनी, जर्मनी से हंगरी, हंगरी से स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से इटली, इटली से बेल्जियम, बेल्जियम से लंदन, लंदन से बंबई, बंबई से नासिक, ये पूरा बनाया हुआ था। और कौन से दिन कहां पर हम रहेंगे, कहां से निकलेंगे, ये सब कुछ उसकी रूपरेखा दी गई थी। तो उसके वजह से मन में एक संतुष्टि थी कि इस दिन फिर से घर पहुंचना है। और घर पहुंचने का अर्थ है भगवत धाम, हालांकि ये भी भगवान का ही धाम है। तो जब हम भगवत धाम पहुंचते हैं तो वो सारे जो अनुभव है, असुविधा का अनुभव उसका विपरीत करना होगा, सारी सुविधाएं वहां मिलेगी। असुरक्षा का विपरीत करना होगा, सारी सुरक्षा वहां पर मिलेगी। भय का विपरीत निर्भयता वहां पर मिलेगी। और ये सब का जो अनुभव हमें हमारे घर पर मिलेगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो आत्मा का प्रवास था 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए, उसका अंत या उसका परम लक्ष्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस हरे कृष्ण महामंत्र की तुलना की गई है, हम अपने घर के द्वार तक पहुंच गए परंतु द्वार पर खटखटाएंगे नहीं तब तक द्वार खुलेगा नहीं। तो द्वार पर जो खटखटाना है उसकी तुलना इस जप से की गई, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो यदि इसे हम ठीक से नहीं करेंगे तो द्वार नहीं खुलेगा। और द्वार खुलने की तुलना की गई है मृत्यु, और फिर अपने घर में कदम रखने की तुलना की गई है मृत्यु के परे भगवान का आध्यात्मिक संसार। तो इसलिए चाहे हम प्रवास करें या न करें, जान लीजिए कि हम इस प्रवास में हैं। यदि हम जाने या न जाने कि हम प्रवास कर रहे हैं कि नहीं, हम प्रवास में हैं। और इसलिए इस मनुष्य जीवन में हमें केवल इससे ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा आहार, निद्रा, भय, ये सब कुछ ठीक से चल रहा है। नहीं, ये उस सेतु के समान है, इसे पार कर कर हमें पहुंचना है हमारे घर। तो घर में सबका स्वागत है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है, आज का स्वीट प्रसाद हम स्पॉन्सर किया है ओमकार कुलकर्णी गुरुजी ने। अगर वो यहाँ पे है तो कृपया करके वैसा संघ के पास आए, हम हमारे तरफ से एक छोटी सी भेंट उन्हें देना चाहते हैं। तो इनका धन्यवाद करेंगे क्योंकि आज उनका बर्थडे के अवसर पर उन्होंने आज का प्रसाद हम स्पॉन्सर किया। तो भगवान के पास उनके लिए प्रार्थना करेंगे जोर से तीन बार हरी बोल बोल के।